सुजीत कुमार की आवाज में अध्याय 3 राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से संबंध रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेज। अल्फ्रेड ग्रेजिया का कथन है कि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान के रूप में झगड़ालू परिवार का एक सदस्य है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा मानवीय भूगोल इस परिवार के अन्य सदस्य हैं। स्वयं राजनीति विज्ञान की भांति ही इस परिवार का अन्य प्रत्येक सदस्य इस परिवार में अपने स्थान और भविष्य के अंतर्गत एक विज्ञान के रूप में अपनी स्थिति के प्रति आश्वस्त नहीं है। किसी भी सदस्य को निजी कक्ष प्राप्त नहीं है और प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों की पोशाकों को पहनने की आदत रखता है। मनुष्य का जीवन सामाजिक है और उसके इस सामाजिक जीवन के विविध पक्ष हैं, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि। सामाजिक जीवन के इन विविध पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। राजनीति विज्ञान मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष को अध्ययन करता है तो नीतिशास्त्र इस बात पर विचार करता है कि मानव जीवन को आदर्श किस प्रकार बनाया जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के आधार पर समाज का अध्ययन करता है तो मनोविज्ञान मानव जीवन के प्रेरक मानसिक तत्वों का। लेकिन मानव जीवन एक पूर्ण इकाई है और जीवन के इन विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग करके इनका पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता है। वास्तव में सभी समाज विज्ञान एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाओं की भांति हैं, जिनकी जड़ एक ही है। मनुष्य का सामाजिक जीवन एक समाज विज्ञान पर दूसरे समाज विज्ञान की निर्भरता और प्रभाव इतना अधिक है कि निरपेक्ष रूप से किसी समाज विज्ञान का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। गॉर्नर के शब्दों में, हम दूसरे समाज विज्ञानों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान एवं राज्य का पूर्व ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार गणित के बिना, यंत्र विज्ञान और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। प्रोफेसर रॉक और अन्य विद्वानों द्वारा भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। समाज विज्ञानों को परस्पर संबंधित तो पहले से ही समझा जाता रहा है, लेकिन प्रथम महायुद्ध के बाद जिस व्यवहारवादी आंदोलन का उदय हुआ और जिसने युद्धोत्तर काल 1945 के बाद तथा अभी हाल ही के वर्षों में एक व्यापक क्रांति का रूप धारण कर लिया है, उसमें तो इस बात पर बल दिया गया है कि मानव का सामाजिक जीवन एक संपूर्ण इकाई है और जीवन के विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मकता पर बहुत अधिक बल दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान की जिन नवीन शाखाओं का उदय हुआ है उनमें कुछ है राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक अर्थमिति आदि। आज अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित समाज विज्ञान शोध परिषद सभी समाज विज्ञानों का एक ही इकाई के रूप में अध्ययन कर रही है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है उन्होंने राजनीति विज्ञान की अन्य समाज विज्ञानों से घनिष्ठता की ओर और अधिक बढ़ा दिया है। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र जीवन और जगत की प्रकृति तथा उसके मूल संबंधी मानव की खोज से संबंधित शास्त्र है। दर्शन शास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिनका प्रतिपादन सृष्टि, जीवन और जगत के संबंध में किया गया है। राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व, जिसका अध्ययन सामान्यतया राजनीति विज्ञान का विषय है, उस विषय का ही एक भाग है जिसकी प्रकृति और जिसके मूल की खोज दर्शन शास्त्र के अध्ययन का विषय है। इस दृष्टि से इन दोनों विषयों का परस्पर संबंधित होना नितांत स्वाभाविक है। इन दोनों विषयों के आपसी संबंधों की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में आपसी घनिष्ठता। पहला, उद्देश्यों की समानता। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य इस बात की खोज करता है कि सृष्टि क्या है, विश्व क्या है और इस सब के मूल में क्या है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी राज्य और राजनीतिक जीवन के स्वरूप तथा उसके मूल की खोज करना है। ये दोनों विश्व अपने प्रतिपाद्य विषय के मूल और उसकी प्रकृति का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार इन दोनों विषयों का उद्देश्य समान है। दूसरा, अध्ययन के स्वरूप की समानता। अध्ययन के स्वरूप की समानता। दर्शन शास्त्र सैद्धांतिक और वैचारिक अध्ययन का विषय है। जीवन की प्रकृति और उसका मूल तत्व, चेतन अचेतन, चेतन द्वैतवाद, जड़ द्वैतवाद आदि उसके अध्ययन विषय के प्रमुख तत्व हैं। यद्यपि राजनीति विज्ञान का समस्त अध्ययन विषय मात्र सैद्धांतिक और वैचारिक नहीं है, और आज राजनीति विज्ञान में सैद्धांतिक तत्वों की अपेक्षा व्यावहारिक राजनीति के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है, लेकिन आज भी सैद्धांतिक अध्ययन इस विषय के संपूर्ण अध्ययन का एक प्रमुख भाग बना हुआ है। राज्य की उत्पत्ति, राज्य का उद्देश्य, स्वतंत्रता, समानता, विधि, संप्रभुता और अन्य अनेक राजनीतिक धारणाएं और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन इस विषय में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का स्वरूप दर्शन शास्त्र के समान संपूर्ण अंशों में न सही लेकिन आंशिक रूप में अवश्य ही सैद्धांतिक और वैचारिक है। इन दोनों विषयों में अध्ययन के स्वरूप की बहुत कुछ समानता होने के कारण ही राजनीति विज्ञान के कुछ लेखक अपने विषय के लिए राजनीति विज्ञान के स्थान पर राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग उचित समझते हैं। वस्तुतः राजनीतिक धारणाएं और राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय होने के साथ साथ दर्शन शास्त्र के अध्ययन विषय के भी अंग हैं। तीसरा, अध्ययन विधि संबंधी साम्य। दार्शनिक पद्धति दर्शन शास्त्र की प्रमुख अध्ययन है पद्धति है। राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति प्रमुख रूप से दो है। पहला, अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति, जिसके अंतर्गत तुलनात्मक, पर्यवेक्षणात्मक और वैज्ञानिक आदि विभिन्न पद्धतियों को अपनाया जाता है, और दूसरा, दार्शनिक पद्धति। राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों, विशेषतया प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, हीगल, ग्रीन, पेशांके आदि ने तो प्रमुख रूप से दार्शनिक पद्धति का ही प्रयोग किया है। प्रमुख रूप से अनुभविक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने वाले राजनीतिक विचारक और लेखक भी किसी न किसी रूप में तर्क और कल्पना का आश्रय लेते ही हैं। भविष्य में राजनीति विज्ञान में दार्शनिक पद्धति का स्थान बना रहेगा। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में पर्याप्त सीमा तक अध्ययन विधि संबंधी साम्य भी है। राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में अंतर। इन दोनों विषयों में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इनमें कुछ अंतर हैं, जिनका अध्ययन निम्न प्रकार है। पहला, दर्शन शास्त्र जीवन जगत और सृष्टि के नियामक तत्व का अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र मुख्यतया मनुष्य का राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विश्व है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र का अध्ययन विषय राजनीति विज्ञान की तुलना में निश्चित रूप से व्यापक है। दूसरा, इन दोनों विषयों में मूल प्रकृति का भी अंतर है। दर्शन शास्त्र विषय की मूल प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक है। दर्शन शास्त्र सृष्टि और जगत के मूल तत्व की खोज वैचारिक मान्यताओं, तर्क, कल्पना और चिंतन के आधार पर करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान की प्रकृति सैद्धांतिक और वैचारिक ही नहीं, व्यवहारिक अध्ययन और यथातथ्य विश्लेषण उसकी प्रकृति का एक प्रमुख अंग है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तो इस बात पर बल दिया जा रहा है कि राजनीति अध्ययनों को तर्क और कल्पना के दायरे से बाहर निकालकर उन्हें वैज्ञानिकता प्रदान की जानी चाहिए। राजनीतिक अध्ययन राजनीतिक व्यवहार और वास्तविकताओं पर आधारित होने चाहिए। तीसरा, राजनीति विज्ञान का संबंध मुख्यतया साकार, मूर्त व प्रत्यक्ष से है। दर्शन शास्त्र का संबंध मुख्यतया निराकार, अमूर्त व अप्रत्यक्ष से है। चौथा, इन दोनों विषयों के अध्ययन की पद्धति में भी अंतर है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धति अनुभाविक व दार्शनिक दोनों है, और इनमें अधिक महत्व तो निश्चित रूप से अनुभाविक पद्धति का है, लेकिन दर्शन शास्त्र में विषय का अध्ययन केवल दार्शनिक पद्धति के आधार पर ही किया जाता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था का शास्त्र है। यह व्यक्तियों के समूह के रूप में समाज तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय राज्य भी स्वयं समाज का ही एक अंग है, और राज्य का एक राजनीतिक संस्था होने के साथ साथ सामाजिक संस्था भी है। विद्वान रिटजनहॉफर ने ठीक ही कहा है कि राज्य अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में तो एक सामाजिक संस्था ही था। अतः राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। प्रोफेसर कैटलिन ने तो यहाँ तक कहा है कि राजनीति और राजनीति समाजशास्त्र अखंड हैं और वास्तव में एक ही तस्वीर के पहलू हैं। इन दोनों के संबंधों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। समाजशास्त्र राजनीति के आधार रूप में। समाजशास्त्र संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों और संबंधों का अध्ययन करता है और यह बताता है कि सामाजिक परिवर्तन तथा विकास के क्या नियम हैं। राजनीतिक सिद्धांतों और संगठनों का उदय सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही हुआ है। अतः राजनीति विज्ञान के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान नितांत आवश्यक है। प्रोफेसर गिंडिंग्स का मत है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य विज्ञान पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन की गति संबंधी नियमों से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या, उष्णता और यंत्र विद्या से संबंधित विज्ञान की शिक्षा देना है। यही नहीं, वरन समाजशास्त्र के अध्ययन ने राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित ज्ञान को आधुनिक युग में पर्याप्त प्रभावित किया है। यही कारण है कि वार्नेस ने कहा है कि राजनीति सिद्धांत तथा समाजशास्त्र के बारे में सर्वाधिक विशेष बात यह है कि राजनीति सिद्धांतों में गत 40 वर्षों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी विकास दिशाएं दिखलाई गई हैं, उन सब की ओर समाजशास्त्र ने ही संकेत किया है। दोनों विज्ञानों का इतना निकट संपर्क है कि गार्नर के शब्दों में राजनीतिक सामाजिकता में गढ़ी हुई है। राजनीति विज्ञान के समाजशास्त्र को देन। राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र को सहायता प्रदान करता है। समाजशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, संगठन, ध्येय और कार्यों आदि का भी अध्ययन किया जाता है और समाजशास्त्र राज्य संबंधी यह विशिष्ट ज्ञान राजनीति विज्ञान से ही प्राप्त करता है। गेटल ने ठीक ही लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र को समाज की सामान्य रूपरेखा के तौर पर वे घटनाएं प्रदान करती हैं जिनका संबंध राज्य के संगठन और कार्यों से होता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंध का एक प्रमाण यह है कि मॉरिस गिन्सबर्ग, ऑगस्ट कॉम्टे, लेस्टर वार्ड, विलियम ग्राहम, सम्नर आदि समाजशास्त्रियों ने राज्य की प्रकृति और उद्देश्यों में इतनी रुचि दिखाई है मानो ये समाजशास्त्र की मुख्य समस्याएं हों। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में अंतर। राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी उनमें अग्रलिखित रूपों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्षेत्र की दृष्टि से दोनों विज्ञानों का क्षेत्र और समस्याएं समान नहीं है। समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक व्यापक है। राजनीति विज्ञान व्यक्ति के राजनीतिक जीवन तथा राज्य और शासन जैसी संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, लेकिन समाजशास्त्र मनुष्य को उसके सारे कार्य व्यापार के साथ देखता है और परिवार, धर्म तथा व्यापार संघ आदि सभी सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। इसी आधार पर गिलक्राइस्ट ने समाजशास्त्र को विस्तृत किंतु समाज राजनीति शास्त्र को विशिष्ट शास्त्र माना है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का संबंध केवल संगठित समुदायों और व्यक्तियों से ही है, जबकि समाजशास्त्र संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के समुदायों और व्यक्तियों से संबंधित है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान मानव की केवल चेतन कार्य प्रणाली का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र मनुष्य की अचेतन कार्य विधि का भी अध्ययन करता है। उद्देश्य की दृष्टि से समाजशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है, किंतु राजनीति विज्ञान एक आदर्शपरक विज्ञान है। समाजशास्त्र केवल इस बात का अध्ययन करता है कि क्या हो चुका है और क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होना चाहिए, इस बात से समाजशास्त्र कोई संबंध नहीं रखता है। लेकिन राजनीति विज्ञान क्या है, होना चाहिए, इस बात से भी संबंध रखता है और इसका उद्देश्य एक आदर्श अवस्था भी की प्राप्ति है। राजनीति विज्ञान और इतिहास। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है और राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन। अतः स्वाभाविक रूप से ये विज्ञान एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं और सीले तो इन दोनों विज्ञानों का पारस्परिक संबंध बतलाते हुए लिखता है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। सभी विचारक राजनीति विज्ञान और इतिहास के घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हैं और इन दोनों के पारस्परिक संबंध का निरूपण निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। इतिहास के राजनीति विज्ञान को देन। इतिहास ने राजनीति विज्ञान को निम्नलिखित रूपों में सहायता प्रदान की है। क, राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित न होकर विकास का परिणाम होती है और उन्हें पूर्णतया समझने के लिए इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास होता है और इतिहास से परिचित हुए बिना न तो इन समस्याओं को ठीक रूप से समझा जा सकता है और न ही हल किया जा सकता है। वस्तुतः वर्तमानकालीन राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन और भविष्य के लिए आदर्श व्यवस्था का चित्रण ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर ही किया जा सकता है। जेलिनेक ने कहा है कि संस्थाओं के उचित अध्ययन के लिए, चाहे वे राजनीतिक, कानूनी या सामाजिक हों, ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाने की आवश्यकता आज एक स्वयंसिद्ध तथ्य बन गई है। ख, इतिहास राजनीति की प्रयोगशाला या पथ प्रदर्शक के रूप में। मानवीय इतिहास में विभिन्न समयों पर राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं जिनके परिणाम और सफलता असफलता का वर्णन इतिहास से प्राप्त होता है। राजनीतिक क्षेत्र के ये भूतकालीन कार्य एक प्रयोग के समान ही होते हैं और ये भूतकालीन प्रयोग भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन से इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर अकबर ने एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन औरंगजेब द्वारा अपनाई गई धार्मिक पक्षपात की नीति का परिणाम यह हुआ कि यह साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हो गया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इतिहास के ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा संघात्मक शासन होते हुए भी शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था को अपनाया। इस प्रकार ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर वर्तमान राजनीतिक जीवन में सुधार करने हेतु भविष्य के लिए मार्ग निश्चित किया जा सकता है। इस प्रसंग में बिलोबी ने कहा है कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान इतिहास की धारा में उसी भांति संचित है जैसे कि नदी की रेत में सोने का कण। राजनीति को इतिहास पर आधारित करने की परंपरा बड़ी प्राचीन है। कौटिल्य ने ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर ही राजाओं को राजधर्म की शिक्षा दी थी और अरस्तु ने अपने अध्ययन में इतिहास का व्यापक रूप में प्रयोग किया था। यही बात मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स, बीबर, कॉम्टे, हार्वर्ड, स्पेंसर, मार्गन आदि के संबंध में कही जा सकती है। राजनीति विज्ञान की इतिहास का देन। राजनीति विज्ञान तो इतिहास पर निर्भर है ही, इसके साथ ही इतिहास भी राजनीति विज्ञान के प्रति निम्न रूपों में बहुत अधिक ऋणी है। क, इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए भी इसमें प्रमुख रूप से मानव को राजनीतिक गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ 17वीं सदी का यूरोपियन इतिहास उस समय तक विशेष महत्व नहीं रखता था जब तक उसमें राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद और समाजवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं और इन विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन न किया जाए। अमेरिका के इतिहास में जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मुनरो सिद्धांत, ट्रेमन सिद्धांत और आइजन हावर योजना को नहीं निकाल सकते हैं। भारत के इतिहास में से यदि हम अशोक, चंद्रगुप्त, बाबर, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, नूरजहां तथा औरंगजेब के राजनीतिक कार्यों और उपलब्धियों को निकाल दें तो उसमें रह ही क्या जाता है। इसी प्रकार यदि हम 20वीं सदी के भारतीय इतिहास का अध्ययन करना चाहें तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ और मुस्लिम लीग का उदय 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम, द्वैत शासन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्ट मिशन, भारतीय छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार की स्थापना, भारत की स्वतंत्रता, भारत के वर्तमान संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान के अंतर्गत हुए 10 आम चुनावों का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेखक ने इस बात को लक्ष्य करते हुए कहा है कि इतिहास का बहुत कुछ भाग राजनीति विज्ञान है। इस प्रकार की सामग्री के अतिरिक्त राजनीति विज्ञान इतिहास को बहुत दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसके आधार पर घटनाओं को अनेक वास्तविक अर्थों में समझा जा सकता है। ख, ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं के परिणाम। इतिहास पर राजनीति के प्रभाव का एक रूप यह भी है कि राजनीतिक विचारधाराएं ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती है। रूसो और मोंटेस्क्यू के विचारों का फ्रांस के राजक्रांति पर, कार्ल मार्क्स के विचारों का सोवियत रूस की राजक्रांति पर तथा महात्मा गांधी के विचारों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर निर्णायक प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे राजनीतिक विचारों ने भूतकाल में ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित किया है और आज भी ऐसे कर रहे हैं। इस प्रकार इतिहास और राजनीति विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों की पारस्परिक निर्भरता के संबंध में सिले ने लिखा है कि राजनीतिक उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता और इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार बर्गस ने भी लिखा है कि यदि राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो उसमें से एक मृत नहीं तो पंगु अवश्य हो जाएगा और दूसरा केवल आकाश कुसुम बनकर रह जाएगा। दोनों में अंतर। इसमें संदेह नहीं कि राजनीति विज्ञान और इतिहास घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, किंतु इन दोनों विज्ञानों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित अंतर बतलाए जा सकते हैं। अध्ययन पद्धति का अंतर। इतिहास में घटनाओं का क्रमबद्ध रूप में अध्ययन किया जाता है और इसलिए इतिहास की पद्धति वर्णनात्मक है, किंतु राजनीति विज्ञान में अध्ययन सामग्री का चयन कर पर्यवेक्षणात्मक और विचारात्मक पद्धति के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र का अंतर। राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, लेकिन इतिहास का क्षेत्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक व्यापक है। इतिहास भूतकालीन जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। उद्देश्य का अंतर। इतिहास घटनाओं का यथाक्रम वर्णन कर देता है और भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात से संबंध नहीं रखता है। इसके विपरीत राजनीति विज्ञान भूत और वर्तमानकालीन अव्यवस्था का भी अध्ययन नहीं करता, वरन भविष्य में क्या होना चाहिए इस बात का भी अध्ययन करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि इतिहास का अध्ययन यथार्थात्मक होता है जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन आदर्शात्मक होता है। निष्कर्षतः इतिहास तथा राजनीति विज्ञान में अध्ययन घनिष्ठ संबंध है। वे पारस्परिक रूप में इतने जुड़े हुए हैं कि उनके वृत्त क्षेत्र कहीं एक दूसरे को छूते और कहीं एक दूसरे का अतिक्रमण करते हुए भी दोनों पृथक पृथक हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में इतना गहरा संबंध है कि प्रारंभिक लेखक अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा मानते थे। यूनानी उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं और प्राचीन भारतीय राजनीतिक कौटिल्य ने राजनीति पर जो प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है उसका नाम अर्थशास्त्री है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान के कई अन्य मान्य ग्रंथों जैसे अरस्तु की राजनीति तथा लॉक की नागरिक प्रशासन पर द्वितीय लेख में उन विषयों का विवेचन मिलता है जिन्हें आजकल अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप अर्थशास्त्र को ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। अर्थशास्त्र द्वारा ज्ञान की एक पृथक शाखा का रूप ग्रहण कर लेने पर भी अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और इनके संबंध का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। समान उद्देश्य। दोनों ही विज्ञानों का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण ही है। एक का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण है तो दूसरे का आर्थिक कल्याण। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की सिद्धि अराजकता और अशांति के वातावरण में संभव नहीं हो सकती है, इसलिए शांति और व्यवस्था की स्थापना राज्य का एक आवश्यक कार्य हो जाता है। अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान की देन। अर्थशास्त्र ने राजनीति ज्ञान और जीवन को निम्न रूपों में अत्यधिक प्रभावित किया है। क, राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम। राज्य के विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का विकास आर्थिक परिस्थितियों का ही परिणाम रहा है। मानव समूह द्वारा कृषि को जीवन यापन के प्रमुख साधन के रूप में अपना लेने पर ही सर्वप्रथम सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना हुई और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मूल कारण भी अधिक आर्थिक गतिविधियां ही रही हैं। इस संबंध में कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा है कि किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन के स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां ही करती हैं। वर्तमान में तो सरकार के स्वरूप भी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। शासन पर तथा राजनीतिक संस्थाओं की दृढ़ता आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है और इस बात को भी सभी पक्ष स्वीकार करते हैं कि आर्थिक जनतंत्रवाद के अभाव में राजनीतिक जनतंत्रवाद असंभव है। ख, राज्य की नीति आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर। न केवल राज्य का स्वरूप वरन समय समय पर राज्य द्वारा अपनाई जाने वाले नीति आर्थिक अवस्थाओं का ही परिणाम रही है। 18वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के इन देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति अपनाई है। इस संबंध में बिस्मार्क और जोसेफ चैम्बरलेन के कथन महत्वपूर्ण है। बिस्मार्क का कथन था कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। इसी प्रकार चैम्बरलेन ने कहा था कि हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे तथा पुराने बाजारों का विकास करेंगे, अतः वर्तमान साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी। वर्तमान समय में आर्थिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही भारत और अन्य देशों द्वारा समाजवाद तथा आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया है। ग, राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम। राजनीतिक क्षेत्र की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही घटित हुई है। 1935 में जब स्पेन की गणतंत्रीय सरकार ने श्रमिक वर्ग के हित में कानून निर्माण का प्रयत्न किया तो सामंत वर्ग, चर्च के पादरी और सेना ने जनरल फ्रेंको के नेतृत्व में संगठित होकर गणतंत्रीय सरकार का तख्ता उलट दिया। 1922 में मुसोलिनी के द्वारा भी लगभग इसी प्रकार की परिस्थितियों से सत्ता प्राप्त की गई थी। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की थी। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा साम्यवाद जैसी विचारधाराओं की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक गतिविधियां ही रही हैं। राष्ट्रपति रूजवेल्ट की आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई नवनिर्माण नीति की सफलता के परिणाम स्वरूप ही लगातार 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और आज की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक दल की शक्ति आर्थिक समस्याओं के सफलतापूर्वक हल पर ही निर्भर है। भारतीय गणतंत्र के संबंध में तो यह बात विशेष तौर पर कही जा सकती है। वर्तमान समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विकसित देशों द्वारा अफ्रीका और एशिया के अल्प विकसित और अविकसित देशों को आर्थिक सहायता देकर इन देशों की राजनीति को प्रभावित करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह राजनीति पर अर्थ के प्रभाव और राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के पारस्परिक संबंध का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार 1991 के वर्ष में इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण तथा कुवैत के इराक में विलय और उसके उपरांत अमरीका एवं उसके सहयोगी देशों द्वारा इराक पर आक्रमण, इस प्रकार का समस्त घटनाचक्र आर्थिक तत्वों का ही परिणाम है। इराक और अमेरिका द्वारा अपनाए गए युद्ध का सबसे प्रमुख उद्देश्य मध्य पूर्व के तेल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था। राजनीति विज्ञान की अर्थव्यवस्था का देन। राजनीति विज्ञान भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र और आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। क, अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर। अर्थव्यवस्था भी बहुत अधिक सीमा तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर निर्भर करती है। आर्थिक विकास और संपन्नता के लिए एक समुचित प्रभावशाली तथा स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था नितांत आवश्यक है। भारत में धीमे आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक तंत्र की अकुशलता और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न नौकरशाही की प्रवृत्ति रहा है। ख अर्थव्यवस्था राज्य की नीतियों पर निर्भर। एक देश के अंतर्गत प्रचलित शासन व्यवस्था के रूप और राजनीतिक नीतियों का आर्थिक व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग, करारोपण, विदेशी मुद्रा आयात तथा निर्यात और उद्योगों की स्थापना शासन व्यवस्था द्वारा अपनाई गई नीतियों पर ही निर्भर करते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुयायी राज्यों में प्रमुख उद्योग धंधे तथा किसी सीमा तक देश की आर्थिक जीवन स्वतंत्र रूप से व्यक्तियों के हाथ में रहता है, लेकिन समाजवादी और साम्यवादी राज्यों में आर्थिक जीवन पर राज्य का नियंत्रण रहता है। कुछ समय पूर्व भारत के शासक दल द्वारा समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाने के कारण ही प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के परिवर्स का उन्मूलन, शासन द्वारा गेहूं के थोक व्यापार के अधिग्रहण आदि कदम उठाए गए थे और भारतीय संघ के कुछ राज्यों में शहरी संपत्ति का समीकरण किया गया। भारत की आर्थिक उन्नति न हो सकने का एक प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था। ग युद्ध का प्रभाव। इसी प्रकार युद्ध एक सैनिक राजनीतिक क्रिया है, परंतु व्यवस्थाओं के मूल्य और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण वियतनाम युद्ध है और 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों का भारत की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। समान अध्ययन विषय। वर्तमान समय में समाजवाद और पूंजीवाद जैसी विचारधाराओं और सार्वजनिक राजस्व जैसे विषयों का अध्ययन अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान दोनों में ही समान रूप से किया जाता है और इस क्षेत्र में इन दोनों विज्ञानों के समान अध्ययन विषय दोनों विज्ञानों के पारस्परिक संबंध का श्रेष्ठ उदाहरण है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य और योजनाबद्ध विकास की जो धारणाएं विकसित हुई और अधिकांश प्रजातांत्रिक राज्यों के द्वारा अपनाई गई हैं, उसे राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के बीच नवीन, गहरा और दोनों के लिए लाभकारी संबंध स्थापित हो गया है। वास्तव में ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं और चार्ल्स बिरियर्ड के शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के बिना राजनीति विज्ञान अवास्तविक एवं सराहनीय ढांचा मात्र है। इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को देखते हुए ही सन 1952 में यूनेस्को के तत्वावधान में गठित कैम्ब्रिज रॉन ट्रेवल ने यह आग्रह किया था कि राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। यूनेस्को के ही तत्वावधान में गठित अर्थशास्त्रियों की समिति ने भी अर्थशास्त्र के साथ राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन पर जोर दिया था। विद्वान एस लिंगर ने ठीक ही विचार व्यक्त किया है कि इन दोनों शास्त्रों के बीच आवश्यक तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए। वस्तुतः राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र से जितने अधिक घनिष्ठ रूप से संबंध है, उतने घनिष्ठ रूप से अन्य किसी भी विषय से नहीं है। अंतर: राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इन दोनों विषयों में निम्न अंतर है। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से राजनीति विज्ञान का प्रमुख अध्ययन विषय राज्य है तथा इसमें राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों और इन संबंधों से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन होता है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय धन है। इसका अंतर को स्पष्ट करते हुए आइवर ब्राउन ने बताया है कि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतया वस्तुओं से होता है और राजनीति विज्ञान का व्यक्तियों से। एक कीमतों का अध्ययन करता है, दूसरा मूल्यों का। प्रकृति की दृष्टि से इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान है, किंतु अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक विज्ञान है। किसी ने विनोद में ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र वह व्यक्ति है जो दाम तो सब वस्तुओं के जनता है जानता है, पर मान महत्व एक का भी नहीं।